जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कलश 105वां की चर्चा अपन ने कल की थी, जिसमें अंतिम पंक्ति है कि इसलिए तो अनुभव करने का विधान है, और उसमें ये कहा था कि अनुभव माने ये जो मार्ग है वही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है और वही मुक्ति है, और शेष सब भाव बंध के कारण है और बंध है। अब शेष सब भाव कहते हैं तो कॉमन रूप में किसी को भी कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता, लेकिन जब इसी शेष की व्याख्या करने जाएं कि शेष माने कौन, तो जिसको टच कर दो उसी को बुरा लगता है। पूजा पाठ को टच कर दो तो पूजा पाठ करने वाले को बुरा लगता है, यात्रा करने को टच कर दो तो यात्रा करने वाले को बुरा करता है, प्रवचन करने वाले को टच कर दो तो प्रवचन करने वाले को बुरा लगता है, समझे ना, स्वाध्याय करने वाले को टच कर दो तो स्वाध्याय करने वाले को बुरा लगता है। लेकिन बुरा लगने से काम थोड़ी चलेगा, जो वस्तु की स्थिति है वो एकदम स्पष्ट है और सामने है। अभी जो अपन चौवन में गाथा शुरू कर रहे हैं 154, उसमें स्पष्ट उत्थान का में ही लिखा है कि वस्तु स्थिति इतनी स्पष्ट होने पर भी, माने इसमें कोई बात छुपी नहीं है कि हमारी समझ में नहीं आई, ऐसी कुछ बात नहीं है। वास्तव में समझ में तो सब आता है, लेकिन स्वीकृत होना बहुत कठिन है। समझ में आना और स्वीकृत होना, समझ में आना तो एक ज्ञान के क्षेत्र का काम है, और स्वीकृत होना ये श्रद्धा की बात है, जिसमें अनादि की उपादेय बुद्धि पड़ी है, जिसको करके हमें कुछ संतोष की प्राप्ति होती है, उसको एकदम एक कह दें कि ये कोई धर्म मुक्ति नहीं, मुक्ति का मार्ग या मुक्ति माने धर्म नहीं है। इतनी भी कह दो कि मुक्ति नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं चलता क्या कहा, फिर ये कह दो धर्म नहीं है तो झगड़ा खड़ा होता है। बात तो ये की है धर्म ही मुक्ति का मार्ग है, वही मुक्ति है। तो ये स्थिति है कि हमारे चित्त को वो स्वीकृत नहीं होता। मैं ये बात जो आपसे कह रहा हूं वो ऐसा नहीं समझना कि जो यहां से बाहर बैठे उनकी बात है, जो यहां बैठे हैं उन सब की बात है। नमूने के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा प्रयोग करके बताता हूं तो आपको ख्याल में आएगा। हमें कभी कभी ऐसा होता है, जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान में आता है कि हमारे कोई पठार पठार जैसा एक चैप्टर में पठार आती है, गाड़ी जैसे चलती है ना बैलगाड़ी, पर ऊपर पठार आ जाए तो उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। ऐसे ही सब कोई भी काम करते करते हमारे जीवन में वो पठार आती है हर एक के में, और उस काम में एकदम गति हमारी मंद पड़ जाती है। जब मंद पड़ जाती है तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम तो बहुत भ्रष्ट हो गए, अभी हम मंदिर में भी रोजीना ढंग से नहीं जाते हैं, जाते हैं तो सिर पटक के आ जाते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, करते हैं तो दो पेज पड़े और भाग जाते हैं, ऐसा खुद ही अंदर से फीलिंग होने लगती है। फिर कुछ दिनों में वो पठार निकल जाता है और फिर उत्साह आ जाता है, दो दो घंटे स्वाध्याय करते हैं, दो घंटे बहुत पूजन करते हैं, और बहुत मतलब खान पान में भी एकदम बहुत सात्विकता बरतने लगते हैं। तो ये होता है तो बुरा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होते ही मैं कुछ धर्मात्मा हो गया हूं, पहले से बहुत सुधर गया हूं, ऐसी भावना होती है कि नहीं, बस बोलो। उसी में शिथिलता आई थी तो मैं मनुष्य मुखद में चला गया, मुझे कोई कुछ नहीं है, ना धर्म की रुचि नहीं ली ऐसा लगता है, और बस जरा वो उत्साह आया उसी में तो उसको लगने लगा मैं कुछ धर्मात्मा हूं। आदि में आज भक्ति में खूब जोर जोर से गाया और फिर नाचने भी लग गया, पसीना से तर बतर हो गया, तो उस दिन तो वो लगता है जैसे मुझे आधा मोक्ष हो गया। जबकि मोक्ष नीचे जो जीव है ना, नीचे समझ गुरु तो कोई नाश्ता नहीं है, बेचारों उनका मोक्ष हो जाता है, ख्याल नहीं ना। यानी उससे जो ये लगना है कि अब मैं कुछ धर्मात्मा हो गया, इसका इसके गाथा में ये कह रहे हैं कि विशेष सब भाव हैं, क्या फर्क हुआ, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, फिर काय की तरक्की, काय की तमजली, इसमें क्या हो गया। जैसे दुकान पे आप बैठे हैं, एक दिन जरा ज्यादा ग्राहक की हो गई, एक दिन जरा कम हो गई, तो उसमें कौन सी तरक्की और कौन सी तमजली की बात है। आखिर दिवाली पे आप हिसाब निकालते हो और जो बनता है वही तो मानते हो ना, किस दिन कम हुआ था, किस दिन ज्यादा हुआ था, उससे क्या मतलब। उससे हमारे उसमें हमारी धर्म बुद्धि है ऐसा लगता है। ये उसकी जांच है, इसकी जांच है कि क्या हो, शुभ भाव हो गया, थोड़ी शुभ क्रिया हो गई, अब भाव आ गया, 10-20 हजार का दान दे दिया, ख्याल में नहीं ना। तो उस दिन वो अपने को कुछ दूसरे एवरेज दिन से अधिक धर्मात्मा समझने लगता है। देखो शास्त्र का नियम तो यहां तक है कि तीन कसाय के अभाव के रूप शुद्ध परिणति होती है मुनिराजों की, और वे मुनिराज तीन कसाय के अभाव रूप शुद्धि वाले तब सातवें गुणस्थान में होते हैं तो शुद्धोपयोग होता है, और छठवें में होते हैं तो शुभोपयोग होता है। तो भी उनकी श्रद्धा में ऐसा नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा धर्मात्मा हो गया और अब मैं भ्रष्ट हो गया। वो जानते हैं कि ये थोड़ा नीचे गिर गया है, उपयोग बाहर आ गया है, लेकिन इस भूमिका में ये होता ही है, ये तो थकान का स्वरूप है, ये तो उसका ही स्वरूप है। मालूम विदेशों में तो ये नक्की हो गया वैज्ञानिकों उसके माध्यम से कि ये 5 दिन काम करते हैं ना, और जो सुबह 5 बजे उठ के भागना पड़ता है इन सबको अपनी ड्यूटी पे, 8 बजे के पहले तो आप पहुंचना है ऑफिस के अंदर, 2 मिनट लेट पहुंचोगे तो 2 मिनट की गैरहाजिरी, 2 मिनट तुम लेट आए कंप्यूटर में दर्द हो जाएगा, अगले दर्द ही नहीं होगा, जब बिल बनेगा ना तुम्हारा तनख्वाह का, तो जितने मिनट ऐसे लेट पहुंचे होगे वो कट जाएगी तनख्वाह उसमें ऑटोमेटिकली। अब कोई आता 1 घंटे की दया में, कोई 2 घंटे की दया में, कोई 1.5 घंटे की दया से भागते हैं, लेकिन जब संडे सैटरडे आता है, शुक्रवार का दिन शाम को सोते हैं, तो सुबह 9-10 बजे के पहले कोई उठता नहीं है, कौन शनिवार के सुबह और रविवार के सुबह, और शनिवार के शाम को 8 बजे सोने चले जाते हैं, शनिवार के शाम का कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता वहां, क्यों कि दूसरे दिन उन्हें फिर 5 बजे ड्यूटी पे जाना है, इसे जल्दी जाके जल्दी सो जाओ, क्योंकि प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान से जैसा तो है नहीं कि अपने गद्दी पे बैठे बैठे भी सोते रहेंगे फिरते रहेंगे, वहां तो जम के काम करना पड़ता है, सब सो जाते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं वो क्या क्यों कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 5 दिन का एक काम करते जो एक रास्ता थी, यदि हम वो तोड़े नहीं दो दिन यदि तोड़ेंगे नहीं तो फिर वो कैपेसिटी नहीं रहती आगे काम करने की, निरंतर काम करना अच्छा नहीं है, एक वैज्ञानिक से सिद्ध हो गया क्या। एक दिन तो खूब सो मानते हैं कुछ नहीं, अपने स्वाध्याय में भी ऐसा होता है, लेखन में भी ऐसा होता है, यदि आप नहीं करते गैप नहीं देंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर द्वारा वो काम की गति में धीमापन आ जाता है, तो वो इसे बोलते हैं मनोविज्ञान में पठार, अंग्रेजी में कुछ और बोलते होंगे हैं कि वो पठार आता है हर एक के उसमें हर काम में, इसलिए ऑटोमेटिक उस पठार को तोड़ने का रास्ता ये है कि एक दिन पूरे सुबह से शाम की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दो, समय पे खाओ नहीं, समय पे बैठो नहीं, समय पे कुल्ला मत करो सब, तो फिर दूसरे दिन से तुम बिल्कुल समय पे कर लोगे, ऐसा उनका सिद्धांत है। और अपने यहां कहते एक दिन आदत खराब हो गई तो वो है, वहां तो घूमने का भी ये कहते हैं, रोजी 9 सुबह 5 बजे घूमने जाते हो ना, तो इसमें सप्ताह में एक एक दो दिन गैप मार जाओ, मत जाओ। व्यायाम करते हो तो व्यायाम करने में, अपने यहां रोटी खाने में तो अपने यहां है ही, एक दिन उपवास कर लो, एक दिन एक आसन कर लो, लेकिन वे खाने में एक आसन उपवास करें चाहे ना करें, लेकिन काम में तो एक आसन उपवास करते ही करते हैं। अब मुझे तो सिर्फ इतना बताना है यहां कि वो जो ऑटोमेटिक होता है उसमें तुम धर्म बुद्धि और अधर्म बुद्धि करने लगते हो। अब ये मेरी तरक्की हो गई, मैं धर्मात्मा हो गया, अब मैं पापी हो गया। ना उतने से पापी भय और ना उतने से धर्मात्मा भय, क्योंकि तीन कषाय का अभाव यदि मुनिराज की भूमिका में है तो वो उस हालत में भी है, ख्याल नहीं ना। जैसे मान लो एक सम्य दृष्टि है, तो जिस दिन वो सुबह 9 बजे तक सो रहा है उस दिन भी सम्य दर्शन कायम है, और जिस दिन 5 बजे उठ गया है उस दिन भी सम्य दर्शन कायम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तद्जन्य धर्मात्मापना उसकी हर स्थिति में रहता है। ये बाहर से छोटे छोटे में से मत निर्णय करो, तुम अपनी अपने धर्मात्मापन का निर्णय इन बाहर की छोटी छोटी क्रियाओं से नहीं करो। ये इसमें कोई दम नहीं है, होती नहीं है ये मैं नहीं कहता हूं, और हो अनुमोदना भी गृहस्थ की भूमिका में अपन करते ही हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, समय पे आता है, रोजीना पूजा पाठ में आता है, स्वाध्याय करता है, लड़का अभी क्लास में विद्यार्थी पहले आ जाते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, भगवान जैसी करते क्या नहीं करते, पर करनी चाहिए। अगर हमेशा डांटते ही डांटते रहोगे तो वो मजा नहीं आएगा। वो अध्यापक सफल नहीं है जिससे विद्यार्थी डरते हों, और वो अध्यापक भी सफल नहीं है जिससे विद्यार्थी डरते ना हों। क्या क्या डरते हो माने इस अर्थ में इतने डरते हों कि क्लास में ही किसी गायब होना पसंद करने लग जाएं। उसमें आकर्षण तो इतना होना चाहिए कि किसी कीमत पर क्लास मुझे छोड़नी ही नहीं है, प्रवचन तो मुझे शुरू से अंत तक सुनना ही है, ऐसा आकर्षण होना चाहिए। और ऐसी नहीं कि वो ऐसी उद्दंडता करने लग जाए कि जैसे तुम्हारे सिर पर ही बैठने लग जाए, वैसी उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी मर्यादा और पूरा आकर्षण। असली गुरु कौन है? तो कमल चंद जी, जिसका विद्यार्थी अधिक से अधिक अपना समागम चाहे, यदि मिले तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझे। 5 मिनट भी कहीं बात करने को मौका मिल जाए तो अपना भाग्य का उदय समझे वो, और 24 घंटा माथे पर बैठने की कोशिश नहीं करें। बने अनुशासन के भीतर पूरा आकर्षण। हम अनुशासन करते हैं तो विकर्षण हो जाता है, आकर्षण पैदा करते हैं तो वो सिर पर बैठने लगते हैं। देखो मेरे क्लास में, मेरे प्रवचन में हर आदमी, हर विद्यार्थी खूब आकर मेरे से दादा प्रवचन शुरू करो, दादा प्रवचन शुरू करो, खूब करते हैं है ना। लेकिन सिर पे कोई नहीं बैठ सकता। मैं कहता हूँ यदि सिर पे बैठाने लग जाऊं तो फिर मैं इसमें रह ही नहीं सकता हूँ, 150 बंदरों के बीच में है? मुझे रहना पड़ता है, शांति से अपना काम करना पड़ता है, तो कैसे चल सकता है? ऐसे ही अपनी शुभ अशुभ वृत्ति, शुभ अशुभ क्रिया, अंदर की जो परमानेंट माने त्रिकाली ध्रुव वाली परमानेंट नहीं है भाई जी, वो परिणति वाली परमानेंट। तीन चीजें हैं, एक तो उपयोग जैसा अस्थिर, अत्यंत अस्थिर, और एक परिणति कुछ स्थिर और कुछ अस्थिर, और एक त्रिकाली ध्रुव अत्यंत स्थिर। समझ में आया ना? अब इसको कैसे करेंगे अपन? एक क्षण में शुभ भाव हो गया, एक क्षण में अशुभ भाव हो गया है? ये तो हो गया परिणति, तत्काल उपयोग। फिर सम्यक दर्शन कायम है, अनंतानंदी के साथ का अभाव कायम है, तो उसकी जो नीचे और ऊपर की मर्यादाएं हैं उनमें उपयोग कितनी चंचल होता रहे लेकिन वो सम्यक दर्शन छूट जाए ऐसी पोजीशन नहीं आई, वो परिणति की शुद्धि। तुम समझ से तो परे आए ना, इसे परिणति की बात हुई। वो जो त्रिकाली ध्रुव बैठा है अंदर में वो तो बिल्कुल उसमें तो कोई अंतर कभी आता ही नहीं है। तो इस तरह की जो तीन चीजें हैं, तो यहां ये कह रहे हैं कि एक क्षण की परिणति के हिसाब से तुम अपने को धर्मात्मा गैर धर्मात्मा समझना ये अच्छी बात नहीं है। जो गाथा पढ़ते हैं, परमठ बाही राजे ते अन्नानेन पुण्य में छन्ति संसार गमन हेदुम मोक्ष हेदुम अजानता परमार्थ सी है। देखो प्राकृत भाषा में का अन्वय हिंदी के पद में ही कर दिया है। कैसा प्राकृत से लगाए अपन, क्या कहते हैं कि परमठ बाहि राजे, परमार्थ से जो बाहर हैं वे अन्नानेन मोक्ष हेदुम अजानंता, मोक्ष के असली कारण को तो जानते नहीं है। परमार्थ से जो बाहि हैं वो मोक्ष के असली कारण को तो जानते नहीं हैं, और जो संसार के गमन का हेतु है ऐसे पुण्य को अज्ञान से चाहते हैं। ये ऐसा है ना प्राकृत में, अब हिंदी में अपन ने सीधा कर दिया कि परमार्थ से हैं बाहि वे मोक्ष मग नहीं जानते, अज्ञान से भव भवन कारण पुण्य को है चाहती है। बिल्कुल सीधा गद्य जैसा हो गया। क्या कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो एक परमार्थ से बाह्य, परमार्थ से क्या है, परमार्थ से बाह्य क्या होता है। देखो परम अर्थ माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा,
ये क्यों है ऐसा अर्थ
संजय क्यों है? ये अपने यहां दो नए हैं, एक निश्चय व्यवहार की अपेक्षा परम शुद्ध निश्चय नए, तो उसका जो विषय होता है जो पदार्थ उसको परम अर्थ कहते हैं। परम माने परम शुद्ध निश्चय नए का और अर्थ माने विषय, इसलिए उसका नाम परमार्थ पड़ा। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को परमार्थ कहते हैं। तो एक होता है द्रव्यार्थिक पदार्थ में परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, तो इसका जो विषय है उसको बोलते हैं परमार्थ, इसी को बोलते हैं परम पदार्थ। परम और अर्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ, तो भजन आता ना आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदार्थ पायो, तो आज मैंने पाया है कि वो परम पदार्थ जो परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है वो तो अनादि अनंत है, वो तो कभी अप्राप्त है ही नहीं, वो तो सदा ही प्राप्त है। वो बहन सी के एक पद्मामृत में आता है ना कि वो तो उभोच है, क्या क्या हाँ समझा ना, वो तो खड़ा ही है, वो भगवान कहाँ गए? जैसे अपने मंदिर में भगवान विराजमान है, तो अभी सुनते जब तुम जाओ दर्शन करो, जाग तो जीव उभो छे क्या जाए, जो, जो जीव है जो तो जागृत है, जागृत माने पर्याय नहीं, माने वो कोई छिपा मिपा नहीं है। सूरज तो आकाश में उग रहा है, अंधे को नहीं दिखता है तो हम क्या करें। नोलू को अवलोक कहते यदि दिवा सूर्य से किम दूसरम, यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो सूरज की क्या गलती है, पत्रम नहीं भी यदा कदीत बिटबे दोसो बसंत सिक्किम। आप जानते हो मथुरा के पास वृंदावन में एक करील नाम का पेड़ होता है, उसे संस्कृत में क्रीट बोलते हैं, उसमें कांटे ही कांटे होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं। तो पत्रम नहीं भी यदा कदीत बिटबे दोसो बसंत सिक्किम, बसंत का क्या दोष है बेचारी, वो तो भाई तो सब में खूब कलियां खिल जाती हैं, अब उसमें पत्ते नहीं आते हैं तो वो क्या करे। ये वही करीत है जो करील, करील बोलते हिंदी में, और जिसमें आता है ना वो रसकान कभी लिखता है टोट कहू कल धोते के धाम है करील की कुंजन ऊपर बारों, मैं सैकड़ों स्वर्ण महलों को, करील की जो कुंज है गलियां वृंदावन की जो गलियों में वो करील की जो झाड़ियां हैं जहां बिना पत्ते की कांटे ही कांटों से भरी, उनमें मुझे रहने को मिले तो मैं रहना पसंद करूंगा और स्वर्ण महलों में रहना पसंद नहीं करूंगा। क्या कोटि के हू कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारों, आया समझ ना। कोटि माने करोड़ों, कल धौत माने सोना, सोना माने कौन सा सोना, 100 इंच का 24 कैरेट का तपा हुआ सोना, उसे बोलते कल धौत। उसका पूरा मकान बनाओ और ऐसे करोड़ मकान हो, हम कोई कहेगा तुम्हें इनमें ये चाहिए कि करील की कुंज वे गलियां जहां पर कोई भी झाड़ी में पत्ता तक नहीं है और कांटे ही कांटे हैं, उन दोनों में से तुम कौन पसंद करोगे रहने के लिए, ये बोलो। इसमें क्या पूछना। लेकिन वो रसखान कभी कहता है कि मैं तो वो करील की कुंजों को पसंद करूंगा। तो क्यों पसंद करेगा तू, दुनिया तो प्रश्न करेगी ना, क्योंकि कभी इनमें जब यशोदा मैया पिटाई करती थी तो श्री कृष्ण इन कुंजों में आकर इन झाड़ियों के पीछे छिप जाते थे। क्या अच्छे समय में नहीं, पिटाई के डर से। तो इन करील के कुंजों को श्री कृष्ण का संयोग प्राप्त है, तो मैं उस जहां जहां श्री कृष्ण खड़ा होता था वो जगह मैं सोने के महलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं। इसे साहित्य की भावना में संबंध भावना बोलते हैं। जब उसका वो संबंध इतना अधिक प्यारा है, श्री कृष्ण इतने अधिक प्यारे हैं कि जहां जहां वो खड़ा होता था वो कितनी भी खजाब जगह हो वो मुझे पसंद है, वही मुझे पसंद है। ऐसे कहते हुए देखो अब परमार्थ का समझे, अब कहते परमार्थ बाहिरा। अब अपन तो क्या कह रहे थे परम पदार्थ पायो, अब पाया क्या, वो तो अनादि अनंत है ही। कि भैया अनादि अनंत तो था और है भी, लेकिन मैंने नहीं जाना था तो मैंने पाया नहीं। जाना पाया माने जाना, वो पाना माना कुछ नहीं है, बस जानना है। क्योंकि जाग तो जीव तो उभय है, वो तो है ही, उसका नाम पाया। मैंने आज जाना तो जिस पर्याय ने जाना उस पर्याय में आनंद की वर्षा हो गई। क्या तो वो कहते परम पदार्थ परमार्थ बाहिरा, परमार्थ से जो बाहर है माने वो जो उसको नहीं जानते हैं, बस इतनी सी बात है। है तो सबके पास पर उसे जो नहीं जानते हैं वे लोग जो संसार गमन हेतु संसार के गमन का कारण है, ऐसा पुण्य भाव अज्ञान से उसे चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष हेतु अजानंता, वे मोक्ष के हेतु को नहीं जानते, उसको ही मोक्ष का हेतु समझते हैं, इसलिए वो चाहते हैं। ये वो कहते हैं बात इतनी स्पष्ट है जो पीछे कह के आए ना। अब वो निष्कर्ष का कलश प्रस्तुत करने के बाद, निष्कर्ष की गाथा प्रस्तुत करने के बाद, 50वीं गाथा में कह आए थे, क्या कह आए थे 150वीं में, रत्तो बंदधि कम्मम जीवो मुंचति विराग संपत्तो एसो जिनो विदेशो सुमारज्जे। रागी जी बनता है रत्तो बंदधि कम्मम, और जीवो मुंचति विराग संपत्तो, जो वैराग से संपन्न है वो जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। बस ऐसो जनोपदेशो, बस भगवान ने तो इतनी सी बात कही थी, बस ऐसो जनोपदेशो, भगवान ने तो क्लियर शब्दों में ये बात कही थी, इसलिए मैं कहता हूं तम्मा कमेशु मां रज्जे, इसलिए तुम पुण्य कर्म में पाप कर्म में राग मत करो। अब इतनी स्पष्ट हो जाने के बाद भी ये जीव अज्ञान से, वो उनकी बात करते करते और समझ लो संसारी जीवों पर करुणा आ गई तो उनकी बात करने लगे। मोक्ष हेतु अजानंता, देखो जो जीव परमार्थ से बाही हैं और मोक्ष के वास्तविक हेतु को न जानते हुए अज्ञान से संसार गमन का हेतु होने पर भी मोक्ष का हेतु समझकर पुण्य को चाहते हैं, माने ये जानते हैं ये मोक्ष का कारण है। देखो वैसे चाहना इतना बड़ा पाप नहीं है, घबराना नहीं। पुण्य की इच्छा ज्ञानियों को भी हो सकती है क्या? इच्छा होना वो चारित्र का दोष है और उसे मुक्ति का कारण जानकर चाहना ये श्रद्धा का दोष है। अब हम क्या समझते हैं अभी कि हाँ हम पुण्य को संसार के भोगों के लिए चाहना ये बुरा है, लेकिन हम मोक्ष के लिए पुण्य को चाहें तो अच्छा है ना? पर हम ऐसा कहता नहीं है, पूजनों में तो बहुत आता है क्या? इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नहीं लुभाऊं, रागादि के दोष हरीजे, परमात्मा में निज पद दीजे। बहुत बहुत खुश हो के देख कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया मांग करी है, कितनी बढ़िया मांग करी है। लेकिन ऐसी मांग करी है जो असंभव है। ज्ञानी जीव तो जानते हैं कि भगवान तुम्हारे रागादिक हरण करने वाले हैं ही नहीं, कोई एक दूसरे के रागादिक का हरण कोई आज तक कर ही नहीं पाया है। और मैं तो अपना पद चाहता हूं, अब तुम्हारा पद तुम ही लोगे, कोई तुम्हें देने वाला है नहीं। इंद्रादिक पद नहीं चाहता हूं, तो हम तो बहुत अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते इसी रूप में। लेकिन वो कहते हैं कि जिस काम की वजह से तू ये कह रहा है, काय के बदले में, तेरी भक्ति के बदले में क्या? तो वो तो उससे तो मिलते नहीं है, तो ऐसे कहने से क्या, तुम बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे वे थोड़े अच्छे हैं, घबराना नहीं। कौन कि जो मिलता है उसको तो मानते हैं, पुण्य से भी भोग मिलते हैं। देखा पुण्यम भोग निमित्तम अज्ञानियों के, अभी उन्हीं को ही मांग रहे। तुम अपने को ज्ञानी बना करके और उसमें जो चीज उनसे मिलनी ही नहीं है वो मांग रहे हो, अपने को बड़ा समझ रहे। अपने तो बहुत स्पष्ट है जो 85 काय की 137 गाथा कौन सी है जिसका टोडरमल जी ने कोट किया है, क्या है? हे भगवान, उसमें लिखा है कि तीव्र भक्ति तो अज्ञानियों के होती है, सुनना, लेकिन कदाचित सुनो ज्ञानियों के भी अशुभ राग से बचने के लिए और कुछ स्थान में राग के निषेध के लिए, वो राग खोटी जगह नहीं जाए इसलिए तुमने तुमसे राग किया। अशुभ अशुभ ना हो गए इसके लिए उनके भी कभी कभी होती है। इसमें बहुत बाबा जी विकल्प चला, उसमें लिखा क्वचित कदाचित, तो कहते नहीं होती तो रोजाना है, लेकिन कथनचित, हाँ तो कथनचित ही अर्थ किया उसका। लेकिन कथनचित का अर्थ क्या है, मैंने बहुत डिक्शनरियां देखी और सब जगह से देखा, तो सब कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बहुत स्पष्ट अर्थ यह है कि कभी कभी होती है, सदा नहीं होती। पर हमें कहना चाहते हैं कि सदा होती है। अब वो भले ही उसे कथन कथन कह दो, चाहे उपाधि नहीं मानता होगा, ऐसे अरुचि पूर्वक करता होगा, ऐसा कुछ नहीं। अरुचि पूर्वक करता, खूब जम के नाचता है, खूब खुशी खुशी नाचता है, लेकिन वो श्रद्धा में और चारित्र में जो फर्क है वो हम नहीं समझना चाहते और समझते नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है, भले ही लिख दिया होगा किसी ने कि देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याया संयमस्तपा दानश चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने, ये रोजीना है, अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब जो मिट गया, हमारे मंदिर में लिखा रखी थी मैंने, एक छंद लिखा रखा था कहाँ, अपने नीचे वाले मंदिर में, अब वो मिट तो गया, लेकिन वो कहाँ लिखा था, कैसा लिखा था, टाइप कैसे थे, कलर कैसा था, वो मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। वो मेरे ज्ञान में टंकित है। अभी द्वारा उधर लिखा पाऊंगा कि नहीं लिखा पाऊंगा, क्या होगा देखते हैं क्या बनता है। मालूम उसमें क्या लिखा था, बनासी दास ने मैं भक्ति का स्वरूप लिखा था कि हे जिनेन्द्र देव, तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय में 24 घंटा रहती है। अब 24 घंटे वाली भक्ति खोजो। ये आधे घंटे वाली शाम का जो प्रोग्राम है ना, क्या बजे से क्या बजे तक है, वो बजे से बजे तक वाली नहीं, 24 घंटे वाली भक्ति। तो उसमें क्या लिखा, कैसे रहती 24 घंटे, कि कभी मैं आपकी जिनवाणी को पढ़ता हूं, कभी सुनता हूं, कभी उसके बारे में सोचता हूं, ऐसे बहुत बहुत सुबह से शाम तक जो भगवान की संदर्भ में जो जो सब क्रियाएं हो रही हैं मेरी और भाव हो रहे हैं, वो सब तुम्हारी भक्ति ही तो है। मुझे बता, हम लोग क्यों हल्के रूप में लेते हैं। हम रात के 2 बजे उठकर और 1 गाथा का पद्यानुवाद करने बैठ जाते हैं और 5 गाथाओं का पद्यानुवाद रात से 2 बजे से 3 बजे के बीच में करते हैं, नींद नहीं आ रही थी इसलिए, तो वो भक्ति नहीं है क्यों? ये भी तो हो सकता था कि आज 24 घंटा टीवी चलती है तो हम नहीं तो टीवी खोल के भी बैठ सकते थे, और बैठ भी जाते हैं कभी कभी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो भक्ति का कब और किस रूप में होगी उसे आप कैसे कह सकते हैं। वो उसने लिखा मेरे, मैं तो 24 घंटा हम इतना लिख रहे, हम बोल रहे, हम बता रहे, हम समझ रहे, हम पढ़ रहे, ये सब हम तो कहते झाड़ू लगा रहे, ये टेबल लगा रहे, यहाँ ये गद्दी लगा रहे, ये बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था समय पर हो, विद्यार्थियों को बुला रहे कि चलो टाइम हो गया प्रतियोगिता चलो, वो सब जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है। वो नासीदास जी कहते हैं इसके नहीं होता तो हम जाकर के कहते भैया देखो हो गया फिर आधा खेल निकल जाएगा, जल्दी चलो ना, उसे लिए इकट्ठे कर करके ले जाते हो ना, तो सिनेमा देखने जाते हो तो वो कहते सब ये भगवान की भक्ति के रूप में ही हमारे ये हर क्रिया है। अकेली एक क्रिया को हमने वो भक्ति के नाम से ले दिया। अब तो हम तो पूजन को भी भक्ति नहीं मानते, सुबह तो पूजन होती है और शाम को भक्ति होती है। अब हम छाप दें कि सुबह इतने बजे से इतने बजे भक्ति होगी और शाम को इतने बजे पूजन होगी, तो हर गला पकड़ लेंगे। रात को पूजन होती है, शर्म नहीं आती तुम्हारे लिए, तो भक्ति होती है रात को फिर क्या? एक ही चीज है भाई साहब, ये जो जो इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर होने की बातें तो बहुत बाद की आई हैं। पहले अपने जैन दिगंबर धर्म में ये था ही नहीं, अब फिर खतरे की बात कह रहा हूं मैं। उठा के देखो, सबसे पहले समंत भद्र के स्तोत्र आए मुक्ति के नाम पर, देवागम स्तोत्र हैं और भी जो हैं, फिर वो बहुत दिनों तक वो स्तोत्र ही चलते रहे भक्ति के नाम पर। फिर अब ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ क्यों और कौन सी शताब्दी में और किस कहाँ से कैसे आया और ये सब चीजें कहाँ कहाँ से कैसे आई, ये सब बांध के आई हुई हैं। और ये ऐसा नहीं हम आज जान रहे हैं, जिस दिन पूजने लिखी थी उसके पहले भी ये सब जानते थे क्या? ये देवसासुर की पूजन है ना भाई जी, मैंने ये पूजन लिखी नहीं थी, मैंने तो पहले भी जयमाला है ना, वो देवसाज गुरु की भक्ति लिखी थी, समझे ना, वो भक्ति के नाम पर ही लिखी थी। लेकिन अब भक्ति तो लोग कभी कभी पढ़ते हैं और पूजा रोजाना करते हैं, तो इसके साथ अष्टक और जोड़ दो, तो उसके बाद में अष्टक जोड़ दिए बना करके, वो पूजा हो गई क्या? देवसाज गुरु का स्वरूप लिखा था। अब फिर कभी तो मान असली तो, और फिर वो भाव दादा की किताब में सब लिखा है, वो जो कौन सी किताब, क्या नाम दादा, वो जिन पूजन रहस्य, कभी कैसा क्या है अभी, तो फिर तुमने ऐसे किए ही क्यों जब जानते थे? अरे भैया जो चल रहा है उसे चलने दो, क्यों झगड़े में पड़ते हो? अब अपन को तो भक्ति करना है तो उस रूप में कर लेंगे। अब मेरा मतलब समझे ना, हम नहीं हर छोटी छोटी बातों में उलझे, और मूल तत्व ज्ञान जो है वो एक तरफ रखा रह जाए, वो एक तरफ रखा रह जाए, ये हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए हम तो सोमदेव का उसको सही मानते हैं। कौन सी? यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम। क्या? यद्यपि शुद्ध हो फिर भी लोक विरुद्ध हो तो उसे नहीं करना चाहिए। ख्याल में आई ना? इसलिए भैया सुबह शाम को बस भक्तियां पढ़ लेंगे और पूजन सुबह पढ़ लेंगे। अब जगत में यही चल रहा है तो हम क्या बिगड़ता है? हमें तो कोई राग द्वेष उनमें है नहीं। वो भी भगवान की भक्ति है, वो भी भगवान की भक्ति है ना। अब हम उसका परंपराओं का क्यों तोड़ें? मुफत में आफत मोल क्यों लें? है संघर्ष क्यों लें? कोई प्रयोजन भूत बात हो तो अवश्य लेंगे। इस गाथा में यह कहा जा रहा है कि जो जीव परमार्थ से बाही हैं, अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, वे जीव मुक्ति प्राप्त करने का वास्तविक उपाय तो जानते नहीं है, और जो पुण्य संसार परिभ्रमण का कारण है उसे मुक्ति का मार्ग समझकर चलने लगते हैं, उसे ही अपनाकर यह समझते हैं कि हम मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे जीवों को कभी भी मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति अमृतचंद जी द्वारा लिखी हुई संस्कृत की टीका का नाम है। समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले आत्मलाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके तथा मोक्ष की कारणभूत सम्मद दर्शन ज्ञान चारित स्वभाव वाली तथा परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली समयसार भूत सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी। अभी देखो मैं टीका करने का तरीका तो देखो, परमार्थ से बाही का अर्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि समस्त कर्मों का पक्ष के क्षय से। अब ये समस्त कर्मों का क्षय नहीं है आराध्य, क्या है? काय का क्षय है? एकांत कि इससे हो जाएगा, ऐसा जो पक्ष है उसका क्षय करके। समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले कर्मों का पक्ष निपट जाए तो उससे जो आत्मलाभ रूप मोक्ष, मोक्ष का मोक्ष की परिभाषा क्या की? कि अपने आत्मा की उपलब्धि, आत्मलाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके भी। ये लिखा है ना वहां पर टोडामल जी ने कि इसने प्रतिज्ञा तो शुद्धोपयोग की ली थी, है ना, और अब उलझ गया शुभोपयोग में, तो वो कहते अपराध हो गई ना, प्रतिज्ञा भंग हो गई। अब इसको कौन प्रतिज्ञा भंग मानता है? क्यों? रात्रि में पानी नहीं पीने की प्रतिज्ञा ले ली और फिर 7:30 बजे तक नहीं, अभी तो है वो जेला, और पी लिया और भंग नहीं भाई, आधा घंटे बाद चला गया पांव में तो भंग हो गई। इसको जो प्रतिज्ञा भंग मानते हैं वे क्या समझे? कोई भी मुनि सुनना, एक हमने तो नहीं ली थी प्रतिज्ञा, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुनि दीक्षा का अर्थ ही ये है कि वो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेता है। छठवां गुणस्थान बाद में होता, पहले सातवां होता है। अब आज की हालत है, न देने वाला जाने न लेने वाला जाने, कि वो शुद्धोपयोग की चिड़िया का नाम है। कि तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शुद्धोपयोग में जाऊंगा, अब भूलेंगे वो बात ही नहीं करते हो। क्यों नरेंद्र, ऐसा नहीं होता अपने साथ कई दफे कि सब लोग बुलाते हैं, आइए अपने, आपको जरूर आना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं और ऐसा है और आपको आना ही पड़ेगा, आपके 2 व्याख्यान तो दिन में रखेंगे ही और ये और वो, और हम जब पहुंच जाते हैं आइए आइए बैठिए खाना खाइए पिए, बात ही नहीं करते हैं। कब का प्रचन होना है कि नहीं होना है, ये किसी का होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करें बोलो। कई जगह भोगा है, अत्यंत नजदीक के लोग वो चाय पानी ही पूछते हैं। हम कहते प्रचन कार्यक्रम क्या है? हम तो उतरते ही गाड़ी में से सबसे पहले पूछते हैं कि भैया कार्यक्रम क्या है, माने हमारा कार्यक्रम क्या है, उसका अर्थ यह है कि जिससे हम उस हिसाब से तैयार होके और आपकी ड्यूटी पे हाजिर हो जाएं समय पर। हाँ कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम है ना, वो जुलूस निकल रहा है ना, वो हो रहा है ना, वो हो रहा है ना, फिर इतने में भोजन होगा, फिर इसमें ये होगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कार्यक्रम वो कहो तीन दिन निकल जा है क्यों राजेंद्र जी, अरे वो उसमें कार्यक्रम में हो ही नहीं, उन्हें विकल्प ही नहीं है कि हमने कुछ कहा था कि हमने कार्य के लिए इन्हें बुलाया था, ये कितना काम छोड़ के किस काम के लिए आए हैं, विकल्प ही नहीं है। तो खोल खोल के हाँ मैं बात करता हूँ, क्या बात करता है, ये तो पहले से नक्की होना चाहिए था ना, क्या बात करता है, किससे बात करता है, नहीं 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 आपका भी रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं रखा जाएगा, थोड़ा बहुत तो रखा ही जाएगा, कभी ना कभी तो रखा ही जाएगा। ऐसा नहीं समझते हम बड़े पंडित जी हो गए तो हमें नहीं भोगना पड़ता, तुमसे ज्यादा भोगना पड़ता है, और सबको ही भोगना पड़ता होगा, प्रकाश नहीं भोगना पड़ता, बोलो, हम भूल ही जाते हैं कि इन्हें काय के लिए बुलाया था, ये काय के लिए आए हैं, है? है? तो समस्त कर्मों के पक्ष के छह से प्राप्त होने वाले आत्मलाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके और मोक्ष की कारणभूत सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाली परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली समयसारभूत सामायिक, ये सामायिक की परिभाषा देखो, ये सामायिक है, प्रतिज्ञा करके भी जो जीव दुरंत कषाय चक्र से पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक रूप आत्म स्वभाव को प्राप्त न होते हुए अत्यंत स्थूल संकलेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप, अत्यंत स्थूल है विशुद्ध परिणाम कर्मों में प्रवर्त रहे हैं, वे अव्यय की बात शुरू होगी, ऐसे उन जीवों की क्वालिटी बताई है जी। सामायिक की प्रतिज्ञा करके, अभी मैंने एक दफे दो चार दफे ऐसा कहा कि भैया अपने दिगंबर धर्म में और हम जन्म से ही पढ़ते आए हैं, जब गुरुदेव का समागम नहीं हुआ था तब से भी, तो अपने यहां सामायिक की बात तो आती है लेकिन ध्यान की अपेक्षाकृत कम आती है, अपने गृहस्थों की अपेक्षा, क्योंकि अपने सामायिक नाम का एक वृत्त है दूसरी प्रतिमा में और तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा है, ध्यान नाम की कोई प्रतिमा नहीं है और ध्यान नाम का कोई वृत्त नहीं है। ध्यान तो अशुभ ध्यान तो वैसे ही होते रहते हैं, पर शुक्ल ध्यान जिनको ध्यान मानते हैं वो तो कहते हैं अंतर्मुहूर्तात्, तो शुक्ल ध्यान वहां होता है उसको ही असली ध्यान कहते हैं मोक्ष के कारण को, और धर्म ध्यान तो स्वाध्याय का ही नाम है, आज्ञा बिताए, उपाय बिताए, विपाक बिताए, संस्थान बिताए, मोटा मोटा तो वो सामायिक शब्द का प्रयोग किया है, तो सामायिक रोजी ना हम करें कौन मना करता है, कब कहा कि आप सामायिक मत करो, कि सामायिक करने की जरूरत नहीं है, और सामायिक की लिखी ना प्रतिज्ञा करके, उनका तो नियम है कि मुनिराज छह घड़ी सुबह, छह घड़ी दोपहर, छह घड़ी शाम को, और शाम अनुवृत्ति चार घड़ी सुबह, चार घड़ी दोपहर, चार घड़ी शाम को, और सामान्य साधक जो पहली प्रतिमा वाले वो दो घड़ी सुबह, दो घड़ी दोपहर, दो घड़ी शाम को, ये सामायिक करें, और अज्ञानी भी वे भी करें, कौन मना करता है, करें मन सामायिक तो आप आत्मा को तो जानते नहीं है ना, वो कार मंत्र ही पढ़े अपने यहां है ना परंपरा, ये हर एक आदमी सब महिलाएं पढ़ती है ना, तो किसी ने कहा कि तुम कल से सामायिक नहीं कर रहे, लेकिन उसे बड़ा नाम दे के, ध्यान नाम दे के, जो ध्यान साक्षात मुक्ति का कारण है, और फिर उसके फल बताना कि ब्लड प्रेशर कम होना, ये होना, हमें तो उससे जो गलत प्रवृत्ति है उसका निषेध करते हैं, ये सामायिक नाम की जो चीज है इसमें लिखा ना सामायिक की प्रतिज्ञा करके, ये तो रोजगार के करने की चीज है, और आप ये सब जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अंतर मुहूर्त तक रह जाए, माने दो घड़ी कम से कम दो घड़ी रखी ना, दो घड़ी चार घड़ी या छह घड़ी, एक घड़ी वाली नहीं है, घड़ी माने चौबीस मिनट, घड़ी माने जो घड़ी में समझना वो घड़ी नहीं, घड़ी माने चौबीस मिनट माने दो घड़ी माने 48 मिनट, माने अंतर मुहूर्त, माने अंतर मुहूर्त के बिना तो मोक्ष होता नहीं, इसलिए अपन उससे कम का उद्देश्य नहीं रखना, अब भले ही एक क्षण को भी शुद्धोपयोग उसमें ना हो पाए, तो हम आगे पीछे नवोकाल मंत्र पढ़ें और भी चिंतन करें। मैं तो कहता हूं चिंतन ही ज्यादा करें, क्योंकि ये पाठ के लिए हमने अलग से बनाया है ना। अब पूजन में भी तो हमने पाठ ही किया है और सब पाठ ही तो किया है, तो उसे कुछ थोड़ा अलग रहने दो ना। क्यों हमारी क्या दिक्कत है कि हमने सामायिक के लिए मान लीजिए 20 मिनट निकाले, तो नक्की कर लेंगे एक महोकार मंत्र की माला फेरना, वो 108 दफे पूरी करना। उसे नवोकार मंत्र कैसे बोलते हैं मुझे सबका कच्चा चिट्ठा मालूम है। यहां पर जब अभी खत्म होगा ना प्रवचन, तो खड़े होकर मुख से नवोकार मंत्र सब जने पढ़ेंगे, तो मैं भी पढ़ता हूं। तो जब तक मेरा 3 दफे में पूरा होता है तब तक आप 9 दफे करके जय श्री राम करके खड़े हो जाते हैं। अब मैं ऐसा खड़ा रहता हूं, सारे लोग उठ गए, जावाणी के ज्ञान से बोलने लगते हैं, मैं खड़ा रहता हूं ठूंठ जैसा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत चक्कर वाला काम है, तो मैंने कहा कि अपन तो 3 ही बार पे क्या करें, इनको समझाएंगे ये तो मानने वाले नहीं है, ये तो पूरा उच्चारण ही नहीं करते हैं। फिर हमने शुरू किया, ऐसे नहीं कोई नहीं बोलेगा, यहां स्पीकर पे एक लड़का बोलेगा और हम उसे देखेंगे पढ़ेंगे, उसे भी कहा देख बिल्कुल एक एक शब्द उच्चारण सही करके बोलने का, जैसा बड़े ज्यादा पढ़ा रहे ना वैसा बड़ा कायदे वैसा बोलने का है। अब वो बोलेगा तो फिर उठते कितना समय लगता है, आप खुद देखते कि नहीं देखते हो। तो ऐसा कोर्स नक्की कर दिया, ये नमोकार मंत्र पढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा, फिर एक भक्तामर का पाठ शुरू कर दिया। फिर हमने और तरक्की करी, तो हमने 20 मिनट के 40 मिनट कर दिए, तो उसमें एक ही भाव स्त्रोत्रोज लगा दो, अच्छा बहुत अच्छा है। फिर हमने 1 घंटा किया, तो फिर एक और जोड़ दो, फिर हमने 1.5 घंटा किया, तो मालाएं 3 फेर लो ना। उसको 1 मिनट शांति से सोचने के लिए चैन से नहीं बैठने देंगे, पूरा कोर्स बताएंगे। अब देखो शास्त्र की बात बताता हूं मैं आपको, मैंने जो पढ़ा था बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वो बता रहा हूं मैं आपको। कांजी स्वामी का इसमें कुछ नहीं है, इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि उनका कुछ नहीं है, उल्टा अर्थ में तो कह रहा ये बता रहा हूं कि हमारे पहले चलता था कि सामायिक की एक विधि है, और विधि कैसी है कि पहले अच्छी तरह से जमीन देखे, वहां कोई जीव जंतु ना हो, फिर वहां चटाई बिछाए, फिर चारों दिशाओं में खड़े होकर के 3-3 दफे नमोकार मंत्र बोले, ऐसे ऐसे आवर्त करे, फिर ऐसा ऐसा करे, है ना, आप समझ गए ना आप, वो हमने पढ़ी थी 8 वर्ष की उम्र में, ऐसा ऐसा करके फिर बैठ के सामायिक करे, और जब सामायिक पूरी हो जाए तो फिर उठ के अंत में वो ये क्रिया फिर दोहराए, है ना, ये विधि थी। तो अब देखो असली विधि में तो सिर्फ शुरू और अंत में वो नवोकार मंत्र का जाप है, बीच में नहीं है, और बीच में क्या कुछ नहीं है। बीच में जो तुमको 1 घंटा 1 घंटा करना है वो तत्व का चिंतन करो, अपनी भाषा में करो जो तुमने सीखा है, लेकिन हमने वो बीच की पूरी भर्ती भर दी। अब वो भी क्यों है, जब मैं तब से सोच रहा हूं इसलिए है कि पहले जमीन देखे कि किसी कीड़े मकोड़े पर बैठ गया तो उसका तो मोक्ष हो ही जाएगा, लेकिन यदि वो नहीं मर पाया और उसने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी सामाजिक एक तरफ रखी रहेगी, मैंने दो ही, उसकी भी सुरक्षा और अपनी भी सुरक्षा, इसलिए निर्जंतु जगह से देखो, है ना, साफ कर लो, फिर उसे चटाई बिछाओ, फिर ये जो चारों तरफ करने का है ना वो चारों तरफ देखो निर्विघ्न वातावरण है कि नहीं। अब यहां बाजे बज रहे, यहां शादी के फेरे पड़ रहे, यहां ये हो रहा, यानी वो चारों तरफ वो ऐसा चक्कर काटने का और कोई मतलब नहीं है भाई जी। ये मेरा चिंतन उसी वक्त का है कि वो चारों तरफ देख के निर्विघ्न जगह छोटो, फिर बाद में तुम्हें उपसर्ग आ जा मुनिराज भी, पहले तो वो बिल्कुल निर्विघ्न निर्जंतु जगह देखते हैं, निर्जन निर्जंतु और निर्विघ्न 3 चीजें हो गई ना, क्या क्या हुई तुम होशियार बहुत तो बोलो बोलो, अरे तीनों का अर्थ बताओ। हाँ और भय नहीं हो, भय काहे का, फिर सुनाता हूं, घबराना नहीं, सचमुच तुम्हें होशियार समझ गई, पूछा हो तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन फिर बताता हूं, निर्जन माने आदमी ना हो, आदमी जन जन माने जनता, स्त्री पुरुष ना हो, निर्जन फिर निर्जंतु इसे कीड़े मकोड़े ना हो, समझे, निर्जन निर्जंतु और निर्विघ्न, चारों तरफ कोई विघ्न ना हो, तीन चीजें होगी, फिर कहता हूं कल तुमसे पूछूंगा, निर्जन निर्जंतु और निर्विघ्न, तो ये वो चारों तरफ देख रहा है, वो ये चारों तरफ एक चीज देख रहा है, इसलिए है, अब न वो का मंत्र बोलता जा रहा है अपना, और इस तरह से चारों तरफ में 12 दफे हो जाएगा, 9 दफे हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो चारों तरफ निर्विघ्न जगह देखकर और सुखासन से पद्मासन से तुम आसानी से लग जाए तो वो भी सुखासन है, यदि आसानी से नहीं लगे तो जैसा लगे वो भी सुखासन है, लेकिन तू जैसा बैठा वो सुखासन नहीं है, क्या समझे ना, फिर अपना तो अपना चिंतन करो, तो इसका कहां निषेध है, दौड़ते दौड़ते सम्मासन हो जाएगा, ये हम कब कहते हैं, दौड़ते दौड़ते भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में, लेकिन ये तो शांति से बैठना, इसका कौन निषेध करता है, निषेध तो नाक की नोक को देखने का करते हैं, आती जाती सांस को देखने का करते हैं, खम्मा को देखने का करते हैं, जो हमारी विधि में कहीं नहीं लिखा, और उसका नाम भैया ध्यान, बहुत बड़ी चीज है, जिसे केवल ज्ञान हो उसको ध्यान कहते हैं, वैसे तो और ध्यान और ध्यान भी ध्यान है, उनका वर्णन है, लेकिन अपने यहां अपनी हैसियत के हिसाब से वो सामायिक मुनि तक के लिए वो रोजाना ध्यान नहीं, रोजाना सामायिक है, तीन टाइम सामायिक, कितना टाइम है क्या नहीं, तो अपन को सामायिक शब्द कोई बुरा लग रहा है, ध्यान ज्यादा अच्छा है, अरे सामायिक जैसा महानता तो किसी शब्द में नहीं है, समय माने भगवान आत्मा, और आत्मा माने आत्मा संबंधी चिंतन, उसका नाम सामायिक, जब बोलते सामाजिक का विचार करो सामाजिक समस्याओं पर, तो सामाजिक हो गया ना, ऐसे ये सामायिक, आत्मा संबंधी की विचार करेंगे तो सामायिक हो गया, समाज संबंधी करेंगे तो सामाजिक हो गया, राजनीति संबंधी करेंगे तो राजनीतिक हो गया, तो ये सामायिक शब्द कितना बढ़िया है, तो आत्मचिंतन की मुख्यता है ना, और आत्मा से वहां से गायब ही है, और हम यदि हम विरोध करते हैं, और तुम उसका नाम ध्यान समझ दो, ध्यान देना फिर ये करना ये करना, अरे ध्यान तो बहुत महान है और बहुत स्थूल है, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बच्चे ध्यान से सुनते ही नहीं है, कल से समय पर आना, रोटी समय पर खाना, ये भी ध्यान से करवाया जाता है, ये ध्यान से सब बात में ध्यान रखवाया जाता है कि नहीं रखवाया जाता है, तो इसे ध्यान शब्द का प्रयोग तो कहां कहां होता है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि परम पवित्र बहुत महान शब्द है, जो जिसको इसी भव में केवल ज्ञान होना हो वो असली ध्यान की बात है, आप जानते हैं दो ही आसन जैन धर्म में प्रमुख हैं, समय हो गया मैं मालूम है, कौन कौन से, एक पद्मासन और एक खड़गासन, और खड़गासन भी अपने लिए नहीं है, तद्भव मोक्षगामियों के लिए है, चौथे काल वालों के लिए भी नहीं है, क्योंकि उनका वज्र विषभ नाराज सेनन होता है, सारा उपयोग उसमें से हट जाए तो अभी वज्र जैसा खड़ा रहेगा, खम्भे जैसा वो शरीर हटेगा नहीं, इसलिए, और हमें तो आंखें बंद कर ली और खड़े हो गए तो फड़ाम से गिर जाएंगे, डॉक्टर कहता है आंखें बंद करके खड़े नहीं होना, आंखें बंद करते ही चक्कर आता है, माथा फूट जाएगा, तो अपने लिए तो कौन सा है कि ऐसा जम के कि तुमको एकदम उपयोग हट जाए, नींद भी आ जाए, तो ऐसे भी गिरो तो गिर नहीं पाओ, इसके लिए वो पद्मासन पैरों को बांध के तो ऐसा बैठाया जाता है, समझ में आपके कि नींद भी आ जाए तो गिरो नहीं, वो उनका है, तो एक ही आसन है, ये 84 आसन तो भोग के हैं, सामायिक के नहीं है, एक पैर के बल खड़े हैं, अंगूठा के बल खड़े हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े ध्यानी हैं, क्या क्या ध्यान है, वो अंगूठा पे ध्यान नहीं रखे तो एक मिनट में गिर जाए, ये जो तुम 9 दफे नवोकार मंत्र बोलने को खड़े होते हो ना, और आंखें बंद करके खड़े हो जाओ ढंग से अच्छे लोग गिर जाएंगे, डॉक्टरों से पूछ रहा हूं जो मैं आपसे कह रहा हूं। सामायिक तो अपने में है ना, आत्मानुभूति जो होती है वो चित्त की एकाग्रता के बिना होती है क्या? तो उसमें कौन मना कर रहा है चित्त का योग्यता एकाग्र? उसके नाम पे न मालूम क्या क्या जो शुरू हो गया है, कूड़ा करकट। निषेध तो कूड़ा करकट का है।